भगवान ने दिया हुआ वीणा बजाते हुए ये भगवान का वीणा तो नहीं है, बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण Narayana 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 Bhagri Narayana 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 Bhagri Kashram Dham Ki बद्रिकाश्रम में ही श्रील व्यासदेव द्वारा जितनी भी रचनाएं हुई है ग्रंथों की, सारे पुराण उपनिषद वेदांत सूत्र महाभारत जिसके अंतर्गत भगवद गीता भी है और श्रीमद् भागवतम भी, इन ग्रंथों की रचना बद्रिकाश्रम में हुई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा है, आप सुने होंगे व्यास गुफा। क्या व्यास देव रहते थे और रहते हैं आज भी, वहां पास में ही और एक गुफा है, गणेश गुफा कहते हैं। कौन सी गुफा? गणेश गुफा। जो सचिव है श्रील व्यास देव के, पास में उनकी गुफा। वहां नारद मुनि आप पहुंचे। पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम। तो श्रील व्यास देव ने नारद जी की पूजा की विधिवत। दोनों में क्या रिश्ता है, क्या नाता है? श्रील व्यास देव शिष्य है, नारद मुनि साक्षात भक्ति के आचार्य गुरुदेव है श्रील व्यास देव जी के। पराशर्य महाभाग भगवता कश्चिदात्मनः। हे पराशर के पुत्र, श्रील व्यासदेव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, परितुष्यति शरीरम आत्मा मानस एव वा। ठीक तो हो, पूछा उन्होंने, हाउ आर यू एग्जाम्पल। परितुष्यति शरीरम, शरीर ठीक तो है, भालो अच्छे ठीक है ना, शरीर ठीक है, आत्मा मानस एव वा। पूछे शरीर कैसा है, आत्मा मन तो ठीक है, खिन्न तो दिखाई दे ही रहे थे, इसीलिए ये जिज्ञासा भी भई। व्यास उवाच, व्यास देव जी कहते हैं, न आत्मा परितुष्यते मे, मेरा आत्मा तो प्रसन्न नहीं है। और जब आत्मा प्रसन्न नहीं है तो शरीर प्रसन्न है, मन कोई चिंता नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण तो आत्मा ही है। तो आत्मा प्रसन्न नहीं है, अगाध बोधम प्रच्छामहे। हे अगाध बोध, आप महान हो श्रील नारद मुनि जी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तन्मूलम, तो क्या कारण है? मैंने तो कितने सारे ग्रंथ लिखे, आप ही देखिए, ये पुराण देखिए, उपनिषद देखिए, ये वेद देखिए। तो आप नारद मुनि देखे, सभी ग्रंथों को देखे, और अब जिसको आप लोग बुक रिव्यू कहते हैं, बुक रिव्यू, तो बुक रिव्यू हुआ। गुरुजी ने सारे ग्रंथ फटाफट सब देख लिए और कहते, यस 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 देख लिया, हाँ समझ गया, नाड़ी परीक्षा हो गई। यथा धर्माश्च अर्था मुनिवर्यानुकीर्तितः, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही न अनुवर्णिता। ये समस्या है, और ग्रंथों के साथ ये समस्या है। आपने अभी तक जितने ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें आपने खूब बखान वर्णन किया है, हे मुनि वरी, किसका? धर्म अर्थ काम मोक्ष तक की बातें आपने खूब की हुई है, लेकिन कहा है क्या कहा है? न तथा वैसे आपने नहीं किया, जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पर इतना प्रकाश आपने डाला है, लेकिन अभाव क्या है? वासुदेवस्य महिमा न अनुवर्णिता, वासुदेव का महिमा आपने नहीं गाया है। वासुदेव की महिमा के साथ, वासुदेव के चरणों में जो प्रेम है, प्रेम का संबंध है, तो आप कहोगे उस क्या समस्या है? मोक्ष की बातें की हुई है अन्य ग्रंथों में, तो बाकी क्या शेष रह गया? प्रेम, भगवत प्रेम कहा है? प्रेम पुमार्थो महान, ये पंचम पुरुषार्थ है। प्रेम पुमार्थो महान पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है, जो इन चारों पुरुषार्थों के ऊपर है। वैसे समस्या तो और भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग अगर शुरुआत करेंगे धर्म से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक जाएंगे हम लोग, वो भी समस्या है ही, उसके पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग धर्म से शुरुआत नहीं करते हैं। आजकल तो हम लोग दो पुरुषार्थ ही चल रही हमारे, एक है क्या अर्थ, और जब जेब गर्मा गर्म हो गया तो फिर काम कहां है? तो धर्म से शुरुआत करेंगे तो मोक्ष तक पहुंच भी सकते हैं, जो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। वैसे श्रीमद् भागवत के दृष्टि से मोक्ष की कोई कीमत नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, पुनः जन्म मैं तैयार हूं, लेकिन प्रभु मुझे हर जन्म में, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर अहैतुकी त्वयी, आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपका प्रेम प्राप्त हो, प्रेममयी सेवा प्राप्त हो प्रभु, बस मोक्ष की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। उन देवताओं को चिंता थी शायद, इसीलिए वो अमृत का कलश लाए थे। ओ, 7 दिनों में राजा की मृत्यु होगी, इसको ये अमृत पिलाए ताकि अमर बनेगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था गेट आउट, चले जाओ यहां से। मोक्ष की तुलना भक्ति के साथ नहीं हो सकती, कृष्ण प्रेम के साथ नहीं हो सकती, धर्म प्रोजित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्रीमद् भागवतम का ये मंगलाचरण ही चल रहा है। वहां कहां है, धर्म प्रोजित ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम से बाहर किया गया है। कैतव धर्म को, कैतव कपटी धर्म को, इसमें ठगाई है, हम ठग जाते हैं, ऐसे धर्म को बाहर किया गया है लाथ मार के, जिस लाथ में कोई बूट भी पहना हो, बूट के साथ वो लाथ के साथ बाहर किया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र, तो ये कैतव धर्म क्या है? श्रीधर स्वामी महाराज जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के बहुत बड़े अथॉरिटी माने जाते हैं, वो कहते हैं ये जो मोक्ष मोक्ष की बातें हैं, यही कैतव धर्म है। मोक्ष नहीं चाहिए हमें, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। हम लोग अशांत होते अशांत, या हम लोग अशांत है, कौन कौन अशांत बनाता है हमें? भुक्ति 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 भोग भोग विलास, ये अशांति का कारण है। मुक्ति भी अशांति का कारण है, और सिद्धि अलग अलग सिद्धि, या कई सिद्धि बाबा और कई भगवान भारत की गलियों में घूम रहे हैं आजकल। सकले अशांत कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, कृष्ण भक्त को कृष्ण प्रेम मई सेवा चाहिए बस, इसीलिए वो शांत है। शांताकारं भुजगशयनं, शांत आकार के भगवान जो अनंत की शैया पर पहुड़े हुए हैं, शांत आकार के साथ जब संबंध जुड़ेगा, भक्तिमय संबंध, तो शांति ही शांति, इसका पावर हाउस से संबंध है, जो सारे विद्युत का स्रोत है, सारी प्रकाश ही प्रकाश। तो शांति के विग्रह, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, ऐसे भगवान से संबंध जब होगा, वो संबंध स्थापित नहीं होता मोक्ष से, नहीं होता है। भगवान से उस शांताकार से भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग से, भक्तिमयी सेवा से संबंध स्थापित होता है। तो इस ये मुक्ति को भुक्ति को पिशाची का पिशाची, ये भूत लगा हुआ है, हस्ती के पिशाच से बचना है तो ये संभव है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रवण और कथा से। नीताय गौर प्रेमानंदे यशो अंकितानि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है कैसा भगवान के यश का गान है। श्री राधा माधव के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः इसीलिए इस ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गाते हैं, गृणन्ति ग्रहण करते हैं, गाते रहते हैं साधव साधु महात्मा भगवत भक्त। श्रीमद् भागवतम की हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का ये चतुर्थ उत्सव हम लोग मना रहे हैं। हम लोगों ने भगवान की बाल लीला से प्रारंभ की ये कथा, गोकुल में भी हम थे तो 4 वर्ष पूर्व मक्खन चोर के साथ, यशोदा मैया के साथ भी। उठी उठी गोपाला हम लोग गाते थे, क्या गाते थे, ए ए गोपाल उठो। अरुणोदय धला के लाला यशोदा दुलाला कन्हैया लाल की तो हम लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। वो दिन थे कृष्ण कन्हैया लाल के, जब वे नन्हे मुन्ने बालक ही थे और स्वयं उठते भी नहीं थे, उनको उठाना पड़ता था, उनको जगाना पड़ता था। और अब हम द्वारका पहुंचे हैं, द्वारका धाम की। तो प्रथम वर्ष गोकुल लीला, द्वितीय वर्ष मथुरा, मथुरा लीला हमने सुनी। दुनिया गोपीनाथ कृष्ण मथुरे सी गे कृष्ण मथुरे सी गेला
सजविला।
इस प्रकार हम लोग गाते रहे। गोपियों के लिए तो ये कोई बहुत दुखी थी गोपियां, भगवान वृंदावन छोड़ के अब मथुरा जा रहे थे। हाँ अभी अभी आता हूं, अब आया से अभी अभी आता हूं। आप गोपियों ने सोचा शाम तक लौट ही जाएंगे, आज नहीं तो कल तो उनको आना ही, आ ठीक आज नहीं आ तो सायंकाल तक आएंगे। ऐसे करते करते वैसे प्रभु आए नहीं, 18 वर्ष रहे मथुरा में। जरासंध के आक्रमण होते रहे, अठारहवीं बार जब जरासंध बहुत बड़ी सेना लेके मथुरा आ धमका, इस वक्त कृष्ण और बलराम ने कोई रुचि नहीं दिखाई युद्ध में, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको कोई महत्व नहीं दिया। प्रभु वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान किए। ऐ रणछोड़ रणछोड़ रणछोड़, किसने कहा होगा? जरासंध ने कहा देखो रणछोड़। रणछोड़ राय की, प्रभु जैसे द्वारका में गुजरात में पहुंचे तो उनकी आरती उतारी जा रही है। रणछोड़ राय की, डाकोर मां कौन छे? राजा रणछोड़ छे, हर गुजराती जानता है। डाकोर मां कौन छे, उसका उत्तर अगर नहीं दे सकता गुजराती तो फिर वो गुजराती नहीं है। डाकोर में कौन है उसको कहना होगा, क्या कहना होगा? राजा रणछोड़ छे, राजा रणछोड़ है डाकोर में, डाकोर नाम का धाम है गुजरात में जो द्वारकाधीश ही है। पंडरपुर मां कौन छे? उठाओ विठोबा छे, विठोबा जो हमारे द्वारकाधीश ही है। तो गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, और मथुरा से आ पहुंचे भगवान द्वारिका में। वहां आते ही उन्होंने उनकी पहली लीला है, जानते हो? आपकी थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। पहली लीला द्वारका में पहुंचते ही भगवान ने खेली, और वो है रुक्मिणी हरण। भगवान सीधे महाराष्ट्र आए हैं, जय महाराष्ट्र। कौंडिन्यपुर आए भगवान, रुक्मिणी का हरण, रुक्मिणी के साथ विवाह, और धीरे धीरे भगवान के 16,108 विवाह हुए। उतने सारे महल भी थे भगवान के, भगवान राजा बने, द्वारकाधीश बने। और अब द्वारका की और भी कई सारी लीलाओं का श्रवण हम लोग पिछले वर्ष किए हैं। अब दशम स्कंद का जो शेष अंश है, कुछ 20 एक अध्याय है, उस पर आधारित अब लीला प्रारंभ होगी। जो लीला प्रारंभ हम लोग कल से ही करेंगे। द्वारकाधीश भगवान की दिनचर्या, नारद मुनि स्वयं गए 16,108 महलों में, एक महल के बाद दूसरा महल, तीसरा, सारे महलों में जाके जो नारद मुनि का आंखों देखा जो दृश्य वर्णन है उसको हम लोग सुनेंगे। भगवान की दिनचर्या, भगवान जो गृहस्थ थे आदर्श गृहस्थ, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श हर दृष्टि से आदर्श, उन आदर्शों को हम सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं हैं जिसका प्रारंभ भगवान की दिनचर्या लीला से होगा, और ये प्रारंभ हम लोग कल से करेंगे। बोलो द्वारका धाम की, रुक्मिणी द्वारकाधीश की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे,
भक्तों से निवेदन है कि कृपया भी